संस्कृत व्याकरण में। आज संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि के अंतर्गत हम आएंगे 115 नंबर के सूत्र पर। यानी आपने ऊपर के सूत्रों के माध्यम से जाना है कि स्वर और घोषवान के आने पर नामी से परे विसर्ग को रकार हो जाता है और उसके पश्चात के सूत्र में घोषवान और स्वर के आने पर रेप से बना हुआ विसर्ग चाहे नामी से परे हो या अनामी से परे हो फिर भी रा हो जाता है। यानी कि ऊपर देखिएगा अग्नि गच्छति तो अग्निर्गच्छति बन गया, नी में नामी है और गच्छति में घोषवान है और अग्नि प्लस अत्र में अग्नि ई में नामी है और अत्र यहाँ पर स्वर है। तो एक बार नामी और घोषवान के रहने पर विसर्ग को रा हुआ है और एक बार नामी और स्वर के रहने पर विसर्ग को रा हुआ है, इसलिए दोनों तरह के रूप रवि गच्छति रविर गच्छति रवि अत्र रविरत्र इसी प्रकार से जितने भी रूप हैं एक एक बार घोषवान के आने पर और एक एक बार स्वर के आने पर नामी के पश्चात के विसर्ग को रा हुआ है। पुनः पितर याही पितरत्र पुनर्गच्छति पुनरत्र इनमें नामी और अनामी दोनों से परे होने पर विसर्ग को रा हुआ है। अब हम चलते हैं अहा प्लस गणा। आप देखिएगा अहा प्लस गणा में किस प्रकार से अपन विसर्ग करते हैं। विसर्ग संधि का मतलब ही है कि विसर्ग का जो रूप स्वर या व्यंजन से परे विसर्ग की प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका रा बनता है कि ज्यों का त्यों रहता है या केवल लोप होता है और फिर संधि होती है, इसी का नाम है विसर्ग संधि। तो अहा प्लस गणा है। अब सूत्र लगता है, सूत्र है 115। अन्नो रेफे सूत्र का अर्थ है कि रेफ रहित घोषवान व्यंजन और स्वर के आने पर अहन के विसर्ग का रकार हो जाता है। आप समझ चुके हैं कि घोषवान किसे कहते हैं, यानी जितने पांच वर्ग हैं कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, इनके तीसरे चौथे अक्षर को घोषवान कहते हैं। यानी प्रारंभ के दो अक्षर अघोषवान होते हैं, क ख च छ ट ठ तथा पाफा, ये अघोषवान कहलाते हैं और बाकी तीनों अक्षर घोषवान कहलाते हैं। तो यहाँ पर घोषवान गणा में ग जो है घोषवान है और कह रहे रेप रहित, तो रेप इसमें नहीं है। यानी अहा जो है ये मूल शब्द अहन, अहन माने होता दिन, इसमें ना क्या विसर्ग होकर के अहा बनता है, तो अहा प्लस गणा है। तो इसमें व्यंजन और स्वर के आने पर अहन के विसर्ग का रकार हो जाता। तो ये मूल में आपने जाना अहन शब्द था, अहन शब्द के ना का विसर्ग हुआ, अब इस विसर्ग को कह रहे हैं कि रा हो जाएगा। तो रा रेप रेप माने ऊपर जो चढ़ जाता है उसको रेप कहते हैं। तो अहा प्लस गणा अहर गणा हो गया, ऐसे ही अहा प्लस अत्र है। तो ये यहाँ पर व्यंजन था घोषवान था, अब यहाँ पर अहन के ना के विसर्ग के बाद में स्वर है, तो कह रहे घोषवान व्यंजन हो और स्वर हो तो भी अहन के ना के विसर्ग को रा हो जाता, तो यहाँ स्वर है तो अहरत्र हो गया, इसको रा हुआ हलंत और रा में आग की संधि हो गई तो अहरत्र बन गया। ऐसे ही अहा प्लस जयति है, तो ज घोषवान है और व्यंजन भी है, तो विसर्ग के रा होकर अहर जयति बन गया। ऐसे अहा प्लस आयाति है, एक घोषवान व्यंजन और एक स्वर को लेते हैं फिर उसके नियम को बताते हैं, तो इस विसर्ग को रा हुआ और वो रा आ के साथ मिल गया अर्थात संधि हो गया तो अहर आयाति बन गया। ऐसे ही अहा प्लस हसति है, तो अहर हसती हो गया और अह प्लस अपि है तो विसर्ग को र होकर के अहरपि बन गया। जितना भी र होता है उसके बाद स्वर है तो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, ये इससे संधि हो जाती है। अब आगे देखिएगा, आगे रेफ होने पर तो अहा राजते है तो यहाँ पर अहा राजते में विसर्ग को ऊ हो गया तो अहो राजते हो गया, समझे ना। इस विसर्ग को ऊ होकर और उनका ऊ को ओ होकर के अहो राजते आ ऊ प्लस राजते तो अहो राजते बन गया, समझे ना। ऐसे ही अब आगे अहा प्लस रात्रम है, ये चीज है अहन शब्द से ना के को विसर्ग होकर के अहा बना तो अहा प्लस रात्रम तो ऊ को यहाँ पर विसर्ग को ऊ हो गया और ऊ को ओ हो गया है तो अहोरात्रम बन गया। अहोरात्रम अहोरात्रम माने दिन रात, यानी कहीं अहोरात्र दिन रात 24 घंटे का जो दिन रात होता है उसको अहोरात्र बोलते हैं। अहा प्लस रूपम है तो ऐसे ही अहा के विसर्ग को ऊ हो गया और रूपम आगे है तो अहा ऊ प्लस रूपम अहो रूपम बन गया। इस प्रकार से ये सूत्र इसके अंदर लग करके और ये शब्द बनते हैं। अब आगे आता है अहा प्लस भ्याम, कहाँ गया अहा प्लस भ्याम, इसमें अब सूत्र लगता है न स्यादिभे। ये सूत्र का अर्थ है सी आदि विभक्ति के भ्याम विष के आने पर विसर्ग का रकार नहीं होता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सी आदि विभक्ति जब आती है ना तो सी औजस अम औसत टा भ्याम विष भ्यास ऐसे ही आते हैं तो ये विभक्तियां कहलाती हैं। आगे लिंग प्रकरण के अंदर इन विभक्तियों का प्रकरण आप कातंत्र रूपमाला में पढ़ेंगे। तो अहा प्लस भ्याम है तो इससे क्या हुआ, विसर्ग का रकार नहीं हुआ। जब रकार नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, अहा प्लस भ्याम इसको ऊ हो गया और ऊ को ओ हो गया तो अहो भ्याम हो गया। ऐसे ही है भीष, विष के सा को विसर्ग हो जाता है तो अहा प्लस विष है, सा का विसर्ग हो तो अलग बात है। फिर इसके भी विसर्ग को ऊ हो गया, ऊ को ओ हो गया तो अहो भी हो गया। रेप सोर विसर्जनिया ये एक सूत्र आता है, इससे रा और सा को विसर्ग हो जाता है। अब है अहा प्लस भुक्ति, अहा प्लस क्या है भुक्ति ही, हाँ प्लस भुक्ति ही, यह जो है एक मिनट, अहा प्लस भुक्ति ही अहा प्लस भवती तो अहर भुक्ति बन गया, इसको विसर्ग को रा हो गया और रा रेफ होकर के भा पे चढ़ गया तो अहर भुक्ति ही, अहर भुक्ति ही दिन में भोजन तो ये बन गया आहार भवती, ऐसे बन गया आहा प्लस भवती तो विसर्ग के रा हुआ और रा को रेफ होकर के ऊपर चढ़ गया तो आहार भवती बन गया, आहार भवती आहार भवती। अब आगे है आहा प्लस पति ही, आहा प्लस पति ही तो अब इसमें फिर अगला सूत्र लगता है अहरादीनाम पत्यादिशु। ये सूत्र कहता है कि पति आदि शब्दों के आने पर अहा के विसर्ग को विकल्प से रकार होता है। विकल्प जहाँ है वहाँ दो रूप बनते हैं तो विकल्प से रकार हुआ इसके विसर्ग को तो एक बार बना इसको रा हुआ पापे चढ़ गया रेप हो गया तो अहरपति ही बन गया और एक बार जब रकार नहीं हुआ तो अहा पति ही इतना ही रहा केवल। अहा पति में अहर पति ही और अहा पति जिसमें भी विकल्प कहेंगे तो आप समझ लो कि उसके दो रूप बनेंगे। तो यहाँ अहा पति और अहर पति ही ऐसे दो रूप बन गए। अब आगे चलिए, एषः प्लस करोति, क्या है एषः प्लस करोति। अब इसके लिए अलग सूत्र बनाया है, एष सपरो व्यंजने लोप्यः,
एष सपरो व्यंजने लोप्यः,
एष सपरो व्यंजने लोप्यः,
एष सपरो व्यंजने लोप्यः।
यह सूत्र कहता है कि व्यंजन के आने पर एष और स के विसर्ग का लोप हो जाता है, तो एष की सा के इसके विसर्ग को लोप हो गया, एषः करोति है ना, तो उसको हो गया एष करोति, अर्थ वही है एषः करोति माने ऐसा करता है, लेकिन इसका लोप हो गया तो अपना क्या बन गया एष करोति। ऐसे ही स गच्छति था तो वो स गच्छति बन गया, क्योंकि रकार के आने पर ये कह रहे हैं व्यंजन के आने पर, तो व्यंजन आगे क्या है करोति का जो है व्यंजन है उससे एश और सा के विसर्ग का लोप हो जाता है, तो एश के विसर्ग का इसका लोप हुआ और सा के विसर्ग का यहाँ सह गच्छति था ना, तो सह गच्छति बन गया, सह गच्छति ये इच्छति लिख दिया है, सह गच्छति। तो इस सा के भी विसर्ग का लोप हो गया तो स गच्छति बन गया, अर्थ वही है कि स गच्छति माने वो जाता है, लेकिन गा आगे व्यंजन के आने पर उसका लोप होने से स गच्छति ऐसा बनता है। फिर अब आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं क्या हुआ कि अग्नि प्लस रथेन, देखो आज ये प्रकरण अपना समाप्त हो रहा है, क्योंकि अग्नि प्लस रथेन तो उससे क्या हुआ अग्नि प्लस रथेन सूत्र लगता है, इसे कह रहे हैं कि नामी परो रम, इस सूत्र से विसर्ग को रकार होना तो अग्नि ही प्लस रथेन तो इससे रकार हो गया पहले, फिर बाद में सूत्र लगता है रो रे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घः,
रो रे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घः,
रो रे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घः,
रो रे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घः।
एक एक सूत्र बोलने में बार बार बोलने में याद हो जाता है, हमने बहुत बचपन में पूज्य माता जी से एकातंत्र व्याकरण पढ़ी, लेकिन वो सूत्र जब आपको पढ़ाने लगते हैं तो पुनः रिवीजन होने से हमें बार बार याद आ जाते हैं, तो इसी प्रकार से आप भी जब ये पढ़ते हैं ना, अगर आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाइए तो आपको और भी जल्दी याद हो जाएगा। तो अग्नि ही रथेन है, अग्निर प्लस रथेन, इसको पहले रा हो गया नामी परोरम से अग्नि रथेन बन गया अग्नि रथेन, लेकिन उसके बाद में ये सूत्र कहता है कि रकार के आने पर पूर्व के रकार का लोप होकर और पूर्व के रकार का लोप होकर पूर्व को दीर्घ हो जाता है, यानी इस रकार का लोप हो गया और इस ई को बड़ी ई हो गया, समझ गए ना, पूर्व के स्वर को दीर्घ हो गया, तो अग्नि रथेन जो ह्रस्व ई है उसको दीर्घ ई हो गया और विसर्ग को जो र हुआ था उसका लोप हो गया, समझ आ रहा है ना, अग्नि रथेन। अब आगे है ऐसे ही पुनः रात्रि, तो पुनः रात्रि में विसर्ग को र हुआ पहले नामी परो रम, पुनः रात्रि में पहले विसर्ग को रा हुआ, उसके बाद में इस सूत्र के द्वारा रकार के आने पर रकार का लोप हो करके इस रकार का लोप हो करके और इस रस आ को दीर्घ आ हो गया, तो ये पुनः रात्रि बन गया, पुनः रात्रि को हो गया पुनः रात्रि 119 नंबर के सूत्र से। अब आगे देखिएगा वट प्लस छाया, वट प्लस क्या है वट प्लस छाया, आप देखिएगा सूत्र लगता है 120 नंबर का, द्विर्भावम स्वर परश्चकारः,
द्विर्भावम स्वर परश्चकारः,
द्विर्भावम स्वर परश्चकारः,
द्विर्भावम स्वर परश्चकारः।
ये सूत्र कहता है कि स्वर से परे छकार के आने पर वह छकार को द्वित्व हो जाता है। तो स्वर से परे माने वट के में आ है, ये स्वर है। इसके बाद छाया छकार, इसमें छाया में छा शब्द है, तो उस छकार को द्वित हो गया, तो वट छाया, वटच छाया ऐसा बन गया। और उसके बाद में देखिए एक सूत्र इसमें अभी और लगेगा, तब जाकर के फाइनल रूप इसका बनेगा। तो अघोषे प्रथमः,
अघोषे प्रथमः,
अघोषे प्रथमः,
अघोषे प्रथमः।
अघोष से परे धुट को प्रथम अक्षर हो जाता है। अब अघोष बताइए क्या है, यहाँ पर अघोष क्या है, टा जो है अघोष है क्योंकि पहला अक्षर है, पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। इसके आने पर जब डबल छा होता है तो उस पहले वाले छा को प्रथम अक्षर हो गया, तो छा का प्रथम अक्षर क्या होगा, च। तो बटच छाया क्या हो गया, बटच छाया, यानी बट प्लस छाया को पहले छा को द्वित्व हुआ, उसके बाद में अघोषे प्रथमा से इस छा को प्रथम अक्षर च होकर के बटच छाया बन गया। ऐसे ही अब आगे कवि प्लस छंदः, कवि प्लस छंदः, तो इसके कवि प्लस छंदः, तो छा ये अघोष है ना, और इसको द्वित हो गया, तो कवि छ छंदा हो गया, और उसके बाद अघोषे प्रथमा से इस छ को च होकर कवि छंदा बन गया। ये 121 सूत्र के ये रूप रहे हैं। ऐसे ही तनु प्लस छवि, इसमें विसर्ग नहीं है, कवि में भी विसर्ग नहीं है, कवि प्लस छंदा, वट प्लस छाया और तनु प्लस छवि। तनु प्लस छवि में भी क्या हुआ कि इस छा को द्वित हो गया पहले, तो तनु छ छवि हो गया। उसके बाद में अघोषे प्रथमा से इस छा को च हो गया, तो तनु छवि बन गया। समझ में आया ना, बिल्कुल सरल। और ये विसर्ग संधि है, संधि प्रकरण बस इसके बाद समाप्त ही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा विषय है, केवल दो सूत्र और हैं, तीन। अब आगे चलिएगा तो आता है बाला प्लस छादयति, क्या है, बाला प्लस छादयति, बाला प्लस छादयति। तो अब इसमें अलग से सूत्र लगता है, दीर्घात पदांतात वा,
दीर्घात पदांतात वा,
दीर्घात पदांतात वा,
दीर्घात पदांतात वा।
हाँ, ये दीर्घ पद से छकार विकल्प से द्वित होता है, तो इसमें कह रहे हैं बालात और फिर छादयति, इसमें भी दो रूप बनेंगे। तो एक बार जब डबल हो गया तो इसको अघोषे प्रथमा से च हो गया, तो बाला छादयति बन गया। और एक बार जब छा नहीं हुआ तो उसको चा भी नहीं हुआ, तो बाला छादयति ज्यों की त्यों ऐसा रूप रहा। तो बाला प्लस छादयति अघोषे प्रथमा, इस सूत्र से छा को प्रथम अक्षर बाला छादयति बन गया, और इसका दूसरा रूप बना बाला छादयति। इसी प्रकार से बेला प्लस छादयति, बाला छादयति और बेला प्लस छादयति। ताजा ताजा नया नया आपको लिख करके, और यद्यपि पुस्तक में लिखा है लेकिन ब्लैक बोर्ड पर देखने से अच्छा समझ में आया, बेला प्लस छादयति। आप इसको एक बार छा को द्वित हुआ और फिर छा को चा हुआ, तो बेला छादयति, और एक बार क्या हुआ, बेला छादयति, तो ऐसे बन गया। अब आगे चलिए आ प्लस छादयति और मा प्लस छिदत, तो आंग मांग भ्याम नित्यम,
आंग भ्याम नित्यम,
आंग मांग भ्याम नित्यम,
आंग मांग भ्याम नित्यम।
इस सूत्र का अर्थ है आंग मांग से परे, आंग मांग से मतलब है आ और मा, आंग मांग से परे छकार के आने पर नित्य ही छकार द्वित्व होता है। तो नित्य ही छकार द्वित्व हुआ मतलब हमेशा, उसमें दो रूप नहीं बन रहे हैं। आ छ छादयति छकार को द्वित्व हुआ, तो द्वित्व माने दो, आ छ छादयति, और फिर अघो से प्रथमा से इस छ को च हो गया, तो आच्छादयति बन गया, आच्छादयति। तो इस प्रकार से जब छा को जो है द्वित्व ही होना था नियम से, इसलिए इसके लिए अलग से उनको सूत्र बनाना पड़ा आचार्य देव को। ये आचार्य सर्ववर्म के द्वारा रचित कातंत्र व्याकरण है, और इसकी संस्कृत की टीका करके जो समझाया गया है, तो वो श्री भाव सेन त्रैविद्य आचार्य ने उसकी संस्कृत टीका की और उसको हिंदी में बना करके हमें कातंत्र रूपमाला नाम की व्याकरण को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्रदान किया है। छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा बालकों को, हम सभी बालक हैं, क्योंकि जब जिस चीज में हमारी अज्ञानता होती है, जो चीज हमें मालूम नहीं होती है, उसका प्राथमिक ज्ञान करना माने बाल शिक्षा। तो इसके अंदर शुरू में ही कहा है आचार्य देव ने, बाल बोधाय कथ्यते, बालकों के बोध के लिए यानी बालकों के प्रारंभिक ज्ञान के लिए ये व्याकरण कही जा रही है। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्रों से बताया है। तो आप इसके अंदर इस 123 नंबर सूत्र में द्वित्व नियम से हुआ, तो आच्छादयति बन गया, आच्छादयति। जब द्वित्व हुआ तभी जो है छा को च हुआ, तो आच्छादयति बन गया। ऐसे ही मा प्लस छिदत, इसमें भी छा को द्वित्व नियम से होना है 123 नंबर के सूत्र से, तो उसमें मा छिदत हाँ, मा छिदत ये हो गया, क्योंकि छा को नियम से द्वित्व हुआ है, तो छा को जब जहां जहां भी द्वित्व होगा वहां छा को फिर च अघोषे प्रथमा से च हो जाएगा, तो मा छिदत बन गया। आप देखिए दध्यत्र है, दध्यत्र शब्द है अब अंतिम सूत्र, संधि का अंतिम सूत्र, प्रकरण का अंतिम सूत्र। इस सूत्र है अस्वरे
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 अस्वरे माने जहाँ स्वर नहीं है, यानी व्यंजन के परे व्यंजन को द्वित्व हो जाता है। तो यहाँ धा भी व्यंजन है, य भी व्यंजन है, तो व्यंजन के परे व्यंजन को, व्यंजन से परे व्यंजन को द्वित्व हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, दध्यत्र, यहाँ धा को द्वित्व हो गया, यानी धा दो बार हो गया और या उसमें मिलना है, तो द यत्र ऐसे हुआ। उसके बाद में कह रहे हैं कि धुटाम तृतीय चतुर्थेशु, ये 77 नंबर का 77 नंबर का सूत्र है, इससे चतुर्थ अक्षर को तृतीय हो गया, तो एक प्रथम वाले चतुर्थ धा को दा होकर उसमें धा मिल गया, तो दध्यत्र हो गया, दध्यत्र, दधि प्लस अत्र, दध्यत्र बन गया द्वित्व होकर के, और पुनः धा को दा होकर के और दध्यत्र बन गया। इस प्रकार से आपको स्वर व्यंजन प्रकृति भाव विसर्ग संधि इन सब के प्रकरण को समाप्त करते हुए इस कातंत्र व्याकरण के संधि प्रकरण को यहाँ पर समापन किया जा रहा है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो, हे जिन वाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पामे सुख चैन। इस प्रकार से व्याकरण अभी पूरी हुई है, अभी आपको दर्शन करना है, तीर्थ वंदना करना है, इसलिए सब लोग बने रहेंगे अभी, और ध्यान देना है कि आप लोगों को जो ये व्याकरण पढ़ाई गई है, इसकी सभी क्लासेस encyclopediajainism.com में संस्कृत व्याकरण क्लास नंबर के नाम से सब उपलब्ध हैं क्लासेस, और यूट्यूब चैनल के अंदर भी भारत गौरव ज्ञानमती माताजी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियो क्लासेस उसमें मिल जाएंगी, अभ्यास कीजिए। और 28 अप्रैल संडे का दिन है, 3:30 बजे ये परीक्षा आपकी ली जाएगी, इसलिए एक दूसरे को सूचना कीजिए। पहले हमने 10 तारीख घोषित की थी लेकिन अपना कोर्स पूरा नहीं हुआ था क्योंकि बीच बीच में धार्मिक कार्यक्रम आ जाने से व्यवधान पड़ता है, तो आपका कोर्स आज हमने व्याकरण का ये संधि प्रकरण का पूरा करा दिया है। अब आपको काफी समय, आज केवल 12 तारीख है और 12 तारीख हो करके हम आपकी परीक्षा लेंगे 28 को। उससे पहले हम 26 और 27 तारीख में आपको थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे व्याकरण की, और उससे पूर्व आप लोग स्वयं भी इसका रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए और दोनों ऑडियो वीडियो क्लासेस ज्वाइन करके पुनः अभ्यास करके अपने विषय को अच्छा बनाइए। जैसे आपने पहली परीक्षा में अच्छा रिजल्ट दिया है, इसी प्रकार से अच्छा रिजल्ट दे करके अपने संस्कृत ज्ञान का परिचय दीजिएगा। जलोदात सांग मई जिनवाणी माता की जय।